13। किसी खटखट की आवाज से जब मैं जागृत हुआ तब गवाक्ष से शयन गृह में प्रविष्ट अरुणोदय की मोहक किरण शलाकाओं को देखकर मैं विस्मयचकित हो गया। इतनी देर तक मैं कभी सोया था मुझे तो याद नहीं। कल की घटनाओं ने क्या मेरे दिनचर्या में भी परिवर्तन कर दिया है? इस संदेह से पलंग पर से झटपट उठकर गवाक्ष के झरोके से बाहर झाँक कर मैंने यह देखा कि सूर्यबिंब पूर्व क्षितिज पर कितना चढ़ाया है। द्वार बाहर से फिर खटखटाया। बाहर से दरवाजा खटखटाने का साहस कौन कर रहा है? इस संदेह वश में जल्दी जल्दी द्वार के पास गया। मैं जानता था कि वह वृशाली नहीं थी, सुप्रिया नहीं थी, मेघमाला भी नहीं थी। सत्यसेन और शोण तो कभी मेरे शयनगृह की ओर आ ही नहीं सकती। संभावना राधा माता की ही थी, कौन हो सकता है? मन ही मन यह प्रश्न पूछते हुए द्वार की अर्गला दूर की। द्वार में अश्वत्थामा को देखकर हंसता हुआ मैं बोला, तुम आ जाओगे या मैं जानता था, तभी तो इतनी देर से उठा हूँ, नहीं तो गंगा के किनारे होता मैं। इतने अंतर्यामी कब से हो गए हो? व्यर्थ की बातें बनाकर मुझको बहलाओ मत। अभी अभी भाभी जी ने बताया कि रात अर्धरात्रि के बाद तुम लौटे थे। अरे दुख छुपाने के लिए अवश्य, परंतु थोड़ी कुशलता से। गुरुपुत्र होने के कारण तुम चाहे जहां और जब प्रवेश कर सकते हो अश्वत्थामन, इसीलिए तुम सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इतना तो मुझे बतलाओ कि पहले तो कभी नहीं आए, आज ही सवेरे सवेरे पास कैसे आना हुआ? इसलिए आया हूँ क्योंकि आए बिना मुझसे रहा नहीं क्या? क्यों, क्या हुआ? मैंने उसको आसन पर बैठने का संकेत करते हुए पूछा। पांडव पांचाली के साथ वनवास के लिए काम्यकरण की ओर आज चले गए हम, आज सूर्योदय से पहले। यह सुनते ही वेदना की और नई लहर हृदय में उठी। कल की घटना के बाद भी क्या मामा ने उनको वनवास के लिए भेजने की हट की थी? मैंने दुखी होकर पूछा। नहीं, स्वयं युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया है वचन पूर्ति के लिए। विश्वकर्मा, महामंत्री विदुर, पितामह और संजय ने उसको लौटाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसने किसी की भी न सुनी। हमारा इंद्रप्रस्थ का राज्य अब तुम्हारा है, दुर्योधन से कहकर उसने राज वस्त्र देह से उतार महाराज के चरणों पर रख दिए। अश्वत्थामा, हम सब क्या कर रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। यदि यही समझ में आ जाता तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या रह जाता? भविष्य में अवश्य कुछ न कुछ विलोभनीय है। इस सुखद आशा से ही संपूर्ण चराचर सृष्टि का दैनिक कार्यक्रम अव्याहत चलता रहता है। युधिष्ठिर गया, उसको जाना ही था, उसके स्वभाव की जन्मजात विशेषता ही यही है। स्वभाव की विशेषता कैसे? सत्यप्रियता और संयम। संयम यह कैसे संयम है अश्वत्थामन? दिग्विजय प्राप्त किया हुआ राज्य तुदुम्बी की डंडी की तरह क्षण भर में फेंक कर चलते बनो? हाँ, यह केवल युधिष्ठिर ही कर सकता है। उसके अगाध संयम का एक और उदाहरण देखना हो तो कल सभा में जिस स्थान पर वह बैठा था उसके सामने के लौह चरणासन को जाकर देखो। क्या है उस चरणासन पर? उसने भीम को रोकने के लिए दृढ़ मन से उस चरणासन पर दाएं पैर का जो अंगूठा दबाया था उसका गहरा गड्ढा। अंगूठा का गड्ढा? हाँ, राजमाता कुंती देवी ने युधिष्ठिर का शांत स्वभाव देकर उससे छोटे चारों पांडवों को उसके पैर के अंगूठे की ओर देखकर निर्णय लेने की आज्ञा दी है। युधिष्ठिर के पैर का अंगूठा ऊपर उठते ही वे चारों भाई किसी पर भी बिजली की तरह एक साथ टूट पड़ते हैं। तो फिर कल उसने अपने पैर का अंगूठा क्यों नहीं ऊपर उठाया? जैसे यह रहस्य जानकर मैं अत्यधिक व्याकुल होने लगा। कल यदि उसने अंगूठा उठा दिया होता तो शायद वह स्वयं सदैव के लिए नीचे गिर गया होता। क्या हुआ होता इसका अनुमान भी कोई नहीं कर सकता। और फिर माता के दृष्टि में युधिष्ठिर विश्वासघाती हो जाता। तुम कहना क्या चाहते हैं? वे चारों कल वहां सभी को धूल चटा देते? यह बात तो नहीं, परंतु भीम ने कल दुशासन का तो निश्चित ही वध कर दिया होता, क्योंकि जिस आसन पर वह बैठा हुआ था उसके लोहे के हत्थे को उसने क्रुद्ध होकर मोड़ दिया था, यह भी आज सभागृह में देखा जा सकता है। अश्वत्थामा, कल की अनहोनी घटना के बाद भी क्या तुम्हारे मन में मेरे प्रति घृणा नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक बात पर हार्दिक दुख अवश्य हुआ है मुझको। कौन सी बात पर? मैंने द्रौपदी को उल्टा कहकर अवहेलना की थी, इस पर नहीं। तुमने यदि यह न कहा होता तो हस्तिनापुर कभी जान ही नहीं पाता कि द्रौपदी कितनी असाधारण स्त्री है। आज तो द्रौपदी विकर्ण द्वारा वर्णित देवयानी, तपति, गिरिजा, सुदक्षिणा आदि महारानियों से भी अधिक वंदनीय हो गई है नगर में। मेरा दुख द्रौपदी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? अपने एक प्राणप्रिय सखा ने जीवा का संतुलन खो दिया था, इसलिए? नहीं, इसलिए भी नहीं, परंतु आज सभी नगरजन तुम्हारे संबंध में जिह्वा का संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए। यह तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हस्तिनापुर में आधे से अधिक लोग आज असंदिग्ध रूप से यह मान रहे हैं कि तुम भी इस कपट द्युत के षड्यंत्र में सम्मिलित थे, बल्कि इस कल्पना का केंद्र बिंदु तुम ही थे। आह, यह तो सर्वथा असत्य है अश्वत्थामा। वास्तव में भूल मैंने ही की। द्वंद्व में जरासंध को मेरे द्वारा जीवन दान देना ही नहीं था, तब ये परिस्थितियां पैदा ही नहीं होती। न वे कौड़ियां आई होती, न वे पासे आए होते। तुमसे यह नहीं हो सकता और आगे भी नहीं हो सकेगा। शत्रु पर दया दिखाना तुम्हारा जन्मजात स्वभाव है, यह तुम्हारी विशेषता है, आज तक तुम यही करते आए हो। अब तुम पांडवों के वनवास की जो बातें कर रहे हो वह तो एकदम अनपेक्षित है। कलद्युत वाली घटना की पीताम्बर ने समाप्ति कर दी थी, पांडवों को यह समझ लेना चाहिए था, समझना चाहिए था, परंतु समझे नहीं। उनके मन किसी वस्तु के बने हैं यही जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि वनवास जाने से पहले अपनी माता के दर्शनों के लिए वे इंद्रप्रस्थ भी नहीं गए। अर्जुन ने तो अपनी माता को स्पष्ट संदेश भेज दिया कि सुभद्रा के साथ अभिमन्यु को लेकर वह द्वारका में श्री कृष्ण के पास चली जाए। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को पांचाल देश ले जाने के लिए अपने भाई धृष्टद्युम्न को संदेश भेजा है। क्षण भर पहले सारा पांडुकुल एक स्थान पर था, अब कैसा 12 बाट हो गया है। अश्वत्थामन, किसी और से कभी नहीं पूछता, परंतु तुमसे एक नितांत मार्मिक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो। मेरा प्रश्न क्या होगा, यह अनुमान करते समय उसके मस्तक पर सूक्ष्म रेखाएं खिंच गई। यदि मैं इसी क्षण रथ दौड़ाता हुआ वायु गति से जाऊं और सच्चे हृदय से पांचाली से क्षमा मांगूं तो पांडव पुनः लौट आएंगे क्या? असंभव। वीरों के निर्णय चार से छूटे हुए बाण जैसे होते हैं। अब तुम ही क्या, यदि पितामह भीष्म भी चरणों पर नाक घिसे फिर भी पांडव नहीं लौटेंगे। कहते हैं ना कि व्याधि से पहले औषध लेनी चाहिए, परंतु पांडवों के साथ व्यवहार करते समय तो किसी ने कभी वह ली ही नहीं। पितामह भीष्म महाराज आचार्य इतना ही नहीं, स्वयं मेरे पिताजी ने भी। अब पक्षी स्वच्छंद चार दिशाओं में उड़ान भर चुके हैं, नीड की ओर जल्दी वापस न लौटने का कटु निश्चय कर। इसका उपाय क्या है? उसकी यह कल्पना की पक्षी उड़ाने भर चुके हैं मुझको बड़ी भयंकर लगी। कुछ भी नहीं, उपस्थित परिस्थिति का डटकर सामना करना, इसका यही एकमात्र उपाय है। अपनी हनु ऊपर कर उसने सिर पर बधी हुई पट्टी की ढीली गांठ कसकर बांधी। तुम सदैव सिर पर यह पट्टी क्यों बांधे रहते? क्षण भर इच्छा हुई कि उससे यह पूछूं, परंतु फिर यह सोचकर कि क्षुद्रता होगी मैं टाल गया। आज एक और आश्चर्यजनक अनुभव मुझको हुआ, गांठ बांधकर वो बोला। क्या? पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा थे, लेकिन कुरुओं के हस्तिनापुर के अनेक प्रजाजन उनके साथ वनवास जाने को चल पड़े। यह और बात है, ये दृष्टिर ने ऐसे सब लोगों को अनुनय विनय कर सीमा पर से ही वापस भेज दिया, अकेले धौम्य ऋषि ही उन 6 जनों के साथ जा सके। जाते समय युधिष्ठिर ने तुमसे कुछ कहा था क्या? उसने कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने ही उसके अनावृत पैरों की ओर देखकर कहा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारे पैर देखकर मुझको इस समय कर्ण की याद आ रही है। वास्तव में यदि कर्ण जैसी अभेद त्वचा तुम्हारे चरणों की होती तो इस वनवास में तुमको कंटक आदि से होने वाले कष्ट न सहने पड़ते। अश्वत्थामा मेरे चरणों को ध्यान से देखता हुआ बोला, कंटक आदि के प्रसंग में मेरी अभेद त्वचा का उल्लेख या कल्पना अश्वत्थामा के अतिरिक्त अन्य कोई कर ही नहीं सकता था। मैंने भी अपने पैरों की ओर देखा, वे आगे की ओर बाण के फल की तरह संकुचित होते गए थे। इस पर मुझको सदैव आश्चर्य भी होता रहा था। एक हाथ में मंद मंद जलती आरती, फूल कुमकुम अक्षत आदि से युक्त थाल और दूसरे हाथ में गाय के धारोष्ण दूध से परिपूर्ण चषक लेकर विशाल धीरे से अंदर आई। प्रभात काल में गुरुपुत्र का दर्शन उसकी दृष्टि में स्त्री मन का महोत्सव था, स्त्रियां सदैव श्रद्धालु होती हैं। आरती उतार कर अश्वत्थामा के बाल पर कुमकुम तिलक लगाकर उसने उसके सिर पर 4 अक्षत डाले, 2 चंपक पुष्प भक्ति से उसके चरणों पर चढ़ाए। अश्वत्थामा ने तत्परता से झुककर उनको हाथ में उठा लिया। अंशुक का छोर दाएं हाथ में लेकर विशाली जब उसको वंदन करने के लिए झुकी तब उसने तुरंत अपने पैर आसन पर सिकुड़कर रख लिए। भाभी जी, क्या आप मेरी आयु कम करना चाहती हैं? मैं तो आपसे छोटा हूँ, हाथ हिलाता हुआ वह बोला। तुम अवस्था में भले ही छोटे हो लेकिन गुरुपुत्र हो, ऋषि कुमार हो, इसीलिए तुम पर श्रद्धा है। मैंने विशाली का ही समर्थन किया। नहीं नहीं, कुछ भी हो यह मैं स्वीकार नहीं कर सकता, वह भी दृढ़ता से बोला। श्रद्धा नहीं तो न सही, दूध का चषक तो स्वीकार करोगे? मैं उसके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था, ऐसा आचरण वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। विशाली ने चषक उठाकर उसके हाथ में दे दिया। हनु के नीचे वस्त्र की गांठ के आगे निकले हुए छोर को बाएं हाथ से नीचे सरकाकर वह दूध पीने लगा। इसी बीच उसके सिर पर बंधे वस्त्र के सिकुड़न में अटका हुआ अक्षत का एक दाना लुढ़क कर दूध के झाग में गिर पड़ा। चषक बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ की अंगुली से उसको निकालने के लिए उसने 2-3 बार चषक में अंगुली डाली। अंत में फेन की एक बूंद उसकी अंगुली पर से उड़कर अक्षत के दाने समेत नीचे फर्श पर जा पड़ी। दूध की वह बूंद देखते ही मुझको एकाएक राधा माता की याद आई। उसके दूध पर ही मेरा शरीर, वैभव, धैर्य सब कुछ पला था, लेकिन मैं कल रात अपनी विचित्र मनोदशा के कारण गंगा के किनारे चला गया था और उसके पैरों के तलवों में चंदन मिश्र तेल की मालिश करना भूल गया था। अब सबसे पहले उसका दर्शन करना आवश्यक था। माता का अर्थ है ममता के परम मंगलमय मंदिर का परिपूर्ण तीर्थ स्थान। मैं चलता हूँ अश्वत्थामन, तुम बैठो, मैं द्वार की ओर मुड़ता हुआ बोला। मुझको भी चलना चाहिए, आज अमावस्या है, मुझको आज दिन भर यज्ञ कुंड के पास बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का पुरस्चरण करना है, वह भी उठ पड़ा। हम दोनों साथ ही बाहर निकले। 14. पांडव वनवास के लिए चले गए। इस घटना पर मुझको विश्वास ही नहीं हो रहा था, परंतु सत्य सदैव वैसा ही नहीं होता जैसा लगा करता है। वे चले गए थे जैसे कोई सर्प चमकती केंचुली छोड़कर सहज ही सरसराता हुआ दूर चला जाए। वैसे ही दिग्विजय द्वारा समृद्ध इंद्रप्रस्थ छोड़कर वे चले गए थे। केंचुली जैसे पूरी की पूरी छोड़ी जाती है, वैसे उन्होंने अखंड राज्य छोड़ दिया था। रत्न, माणिक्य, मोती, प्रवाल, पन्ना, पुखराज, हीरे, नीलमणि, गोमेद, विल्लौर, वैदुर्य, सुवर्ण, गायें और सेवक सेविकाएं, इनमें से कुछ भी उन्होंने अपने साथ नहीं लिया। इतना ही नहीं, देह पर से राजवस्त्र भी उतार कर वे चले गए। अश्वत्थामा के कथनानुसार तो वे पैदल चले गए थे। जीवन भर के अनुभव से यह मैं जान गया था कि कुछ घटनाएं होती ही अटल हैं। साथ ही यह भी सत्य था कि कुछ घटनाओं के परिणाम टाले जा सकते हैं। इसके लिए किसी को लगन से प्रयत्न करना आवश्यक है। अखाड़े में अर्जुन के गले में पड़ने वाली माला को कोई आगे बढ़कर रोक सकता था। स्वयंवर में मेरी अवहेलना को धैर्यपूर्वक आगे बढ़कर कोई रोक सकता था। सभा में पांचाली का अकारण ही जो घोर अपमान हुआ उसको कोई भी टाल सकता था, और पांडवों के वनवास को भी दृढ़तापूर्वक कोई रोक सकता था। परंतु इसके लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। यह सब इस प्रकार घटित होता चला गया जैसे सबको एक विशिष्ट मार्ग से एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचना हो। अब कभी भी उस विशिष्ट मार्ग को कोई छोड़ नहीं सकता था। अश्वत्थामा के कथनानुसार उसका एक ही उपाय था, जो कुछ सामने आए उसका सामना करने के लिए धैर्यपूर्वक खड़े रहना। उसी के लिए मैं मन के धागे एकत्र करने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु वे बिखर गए थे। मेरा दुख एक नहीं था। मृग नक्षत्र की एक बौछार के बाद जैसे चारों ओर अंकुर फूट उठते हैं, वैसे ही मेरे दुख अनंत थे, असंख्य थे। घटना की एक एक नई बौछार पड़ रही थी, प्रश्नों के नए नए अंकुर सिर उठा रहे थे। फिर भी मेरा चुप रहना आवश्यक था। मेरे आसपास की परिस्थिति इतनी संकटापन्न थी कि स्पष्ट निर्णय के लिए पर्याप्त अवकाश तक नहीं मिला था। दुर्योधन पर मुझ पर जो स्नेह था वह प्रगाढ़ विश्वास में परिवर्तित हो गया था। मैं अच्छी तरह जानना चाहता था कि विश्व के प्रलय में वह अकेला ही मेरा साथ निभाएगा और मैं उसका। अन्य किसी को भी मैं छोड़ सकता था, परंतु उसको छोड़ने की कल्पना भी मुझसे सहन नहीं होती थी। बार बार मैं यह सोचता था कि दुर्योधन को अपने विचारों में, स्वभाव में, व्यवहार में समय रहते ही परिवर्तन कर लेना चाहिए, नहीं तो। परंतु स्वभाव रथ का घोड़ा थोड़े ही है जिसको जो चाहे जब बदल ले। मैं सुन्न हो गया था। मेरे भविष्य का जो चित्र मेरे सामने खड़ा हो रहा था वह मुझको कहीं पागल ही तो नहीं कर देगा। इस प्रतीति से कभी कभी यह इच्छा होती थी कि मन में संचित कुंभ को चकनाचूर कर दूं। वाली बार निराशा काले पक्षी मन के प्रांगण में उतर रहे थे। ऐसे घुटते हुए मन को एक ही जगह शांति मिल सकती थी, नर्तकियों के पदन्यास में अथवा मध्य के चषक में। कर्ण के लिए अब यही मार्ग लगभग निश्चित सा हो गया था। कर्ण जो कभी राजहंस और गरुण की तरह जीवन बिता रहा था, वही कर्ण अब कौए की तरह मध्य के काले कोतर में सिर झुकाकर प्रवेश करने वाला था। आंखों से तेज का रस प्राशन करने वाला कर्ण अब आंख मूंद कर सोमवल्ली का रस प्राशन करने वाला था। मन की आग बुझाने के लिए उधर में मध्य की आग भरने वाला था। जागृत आंखों के आगे अंधकार देखने के बजाय मन के अंधकार में मत होकर डूबना चाहता था। उस अंधकार में कोई भी मुझे सुतपुत्र कहने वाला नहीं था। तूने भूल की, तू नीच है, या कहकर कोई बाघ बाण चलाने वाला नहीं था। इसीलिए एक दासी द्वारा मैंने प्रभंजन को आकर मिलने का संदेश भेजा। दुर्योधन के कारण वह मुझसे निश्चित रूप से विश्वासपूर्ण व्यवहार करेगा। थोड़ी देर में प्रभंजन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आश्चर्य की एक सूक्ष्म सी रेखा उसके उठे हुए भोले भाल पर खिंच गई थी। मैंने उसको पहली ही बार बुलवाया था। प्रभंजन, मुझको अतिशीघ्र सोमरस और मरयक चाहिए, जाओ। मैंने उसकी ओर पीट करके आज्ञा दी। मैं नहीं चाहता था कि उसकी मोटी भाव में प्रश्नांकित होकर मेरी दृष्टि में पड़े। आज्ञा पालनार्थ वह चला गया होगा यह सोचकर मैं मुड़ा, परंतु उसको सिर झुकाए हुए पूर्ववत ठिठाई के साथ सामने खड़ा देखा, मेरे शरीर में आग लग गई। प्रभंजन, सुना नहीं क्या? उसके पास जाता हुआ मैं चिल्लाया, महाराज आप भी? उसका सिर अब भी झुका हुआ था। प्रभंजन, मैं सोमरस के घूंट चाहता हूँ, उपदेश नहीं। दास आज्ञा पालन करते हैं या भूल गया क्या? झुक कर अभिवादन कर वह चला गया, भारी सांकड़ों से पैर बंधे हाथी की तरफ। कुछ देर बाद एक दासी सोमरस और मरयक के चंचु पात्र लेकर भवन में आई। मध्यस्थ आसन पर उनको रखकर वह अवकुंठन में खड़ी रही। प्रभंजन की यह टाल मटोल अपमानजनक लगी। एक तुच्छ दास भी क्या आज मेरा मार्गदर्शक बनना चाहता है? जाओ, उसी को भेज दो, मैं दासी पर चिल्लाया। विवश होकर प्रभंजन फिर भवन में आया। प्रभंजन, सोमरस के चषक भर तेरे नाम से भी अधिक भयानक प्रभंजन मेरे मस्तिष्क में है। तू ही चषक देने के लिए तू ही योग्य है। उसने सिर झुकाकर एक चषक भरा और मेरे सामने ले आया। मैंने दृढ़ता से वह हाथ में ले लिया। उस परिपूर्ण रस में झांक कर देखा तो राधा माता, विशाली, शोण, सुप्रिया, सत्यसेन, मेघमाला, पुष्पावती, अश्वत्थामा और पंचाली, इन्हीं के असंख्य चेहरे मुझको उसमें दिखाई देने लगे। उन्हें क्षण चित्रों को देखकर ही मेरा मन विचलित न हुआ। विचलित होने के लिए ही तो मन में कुछ चेतना होनी चाहिए न। चषक होठों के पास लाते ही उसके रस की उस उष्ण गंध से नासिका रंध्र शून्य से हो गए। क्षण भर को मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे उस रस में सूर्यबिंब की प्रतिमा हो। फिर भी उस चषक को होठों के पास लाकर मैंने आंखें बंद कर ली। अंगराज, किसी ने द्वार में से प्रवेश करते हुए आवाज थी। उस आवाज की निकटता से मैं चौंक पड़ा था और चषक मेरे हाथ से छूट कर धरती पर गिर पड़ा। सारा द्रव इधर उधर फैल गया। कौन है? मैं तत्क्षण क्षण मुड़ा। मेरा सारा शरीर ऋषभ की त्वचा की तरह सिहर रहा था। मैं हूँ, वे संजय काका थे। बचपन में कभी बताया हुआ उनका जातिवंत घोड़े का लक्षण मुझको एकदम याद आया। जातिवंत घोड़ा कभी नीचे बैठता ही नहीं। काका आप? मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्या कहा जाए यही समझ में नहीं आया। चतुर प्रभंजन ने अवसर देखकर सोमरस की गंध दूर करने के लिए झटपट सुरपुन्नाक के पुष्पों के अर्घ की एक सुगंधित शीशी दर्पण के पास उलट दी। सोमरस की उग्र गंध न जाने कहाँ विलीन हो गई। सुरपुन्नाक की रोमहर्षक गंध ही भवन में महकने लगी। मेरे कानों की गुफा में वही एक कथन पुनः पुनः प्रतिध्वनित होने लगा। जातिवंत घोड़ा कभी नीचे बैठता ही नहीं। जातिवंत घोड़ा कभी नीचे बैठता ही नहीं। क्यों? मुझको देखकर आश्चर्य हो रहा है? कर्ण संसार के लिए अंगराज होगा, मेरे लिए तो अधीरथ का पुत्र कर्ण है। यह बात क्या अब याद नहीं रही? आसन पपेट के मेरी आंखों में भीतर तक झांकते हुए उन्होंने मुझसे कहा, नहीं, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। आगे बढ़कर उनकी चरण धूली मैंने सिर से लगाई। मेरे यहाँ आगमन की अपेक्षा और अधिक आश्चर्यजनक आगमन एक अद्भुत व्यक्ति का आज हस्तिनापुर में हुआ है। उसे सावधान रहने का संकेत देने के लिए मैं यहाँ आया। किसका आगमन? पांडव वनवास चले गए हैं या वार्ता द्वारका में पहुंचने पर कहीं कृष्ण तो नहीं आ गए? यह सोचकर मैंने उत्सुक होकर पूछा। ऋषिवर दुर्वासा का, शांतिपूर्वक संजय काका बोले। मुझको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों होता? ऋषि मुनियों से कि ऐसे आगमन मैंने आज तक हस्तिनापुर में देखे नहीं थे क्या? उन्हीं में से एक दुर्वासा, अंगराज। इन दुर्वासा के साथ रहने से या तो जीवन का कल्याण हो जाएगा या संपूर्ण विनाश। इसीलिए उनको टाल देना ही अच्छा है। यह सुझाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। सच पूछो तो मेरी तो अब किसी के पास जाने की इच्छा ही नहीं होती। फिर दुर्वासा का प्रश्न ही क्यों? लेकिन काका, आपके एक विचार की सत्यासत्य मुझको एक बार परखनी है। किसकी? अपना तेजस्वी भार कुछ ऊंचा कर उन्होंने पूछा। एक पैर मोड़ कर निद्रा लेने वाला घोड़ा लंबे प्रवास के लिए क्या सचमुच ही बेकार हो जाता है? हाँ, परंतु अपने हस्तिनापुर की अश्वशाला में एक भी ऐसा घोड़ा नहीं है। यदि होगा भी तो मुझको उसका कोई ज्ञान नहीं। मैंने यूं ही अपने पैरों की ओर देखा। वे आगे की ओर सिकुड़ते हुए क्यों चले गए हैं, इसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिल सका था। 15 सभागृह की एक ही घटना ने जीवन के सत्य पर ऐसा विश्वास समाप्त कर दिया था। विशाली ने मेरे प्रति पांचाली के जो विचार बताए थे उनसे तो उसको और अधिक बल मिला। भ्रम के घेरे में पड़ने के कारण कहो या सुलगते मन के उद्वेग के कारण मैंने अधमति अधम गति को प्राप्त होकर पांचाली से अपशब्द कहे थे। मेरा वह सर्वप्रथम अधपतन था। उससे जो बात उत्पन्न हुई थी उसको अब कोई भी नहीं रोक सकता था। वह बात थी पांडवों से बैर, कभी न मिटने वाला अखंड बैर। अश्वत्थामा ने जो कुछ कहा था वह नितान सत्य था। पक्षी नीड़ से चारों दिशाओं में उड़ान भर चुके थे। उनके पंख जहां ले जाए वही उनकी दिशा थी। और इस सत्य का दोष कोई कितना ही गरज कर मुझे अकेले के ही मत्थे मरने का प्रयत्न करे, फिर भी मेरा मन मुझसे स्पष्ट कर रहा था कि आसपास का आपस का यह बैर भले ही अब सुलग उठा हो, लेकिन उसका कारण अकेला कर्ण निश्चय ही नहीं था। मैं अपना समर्थन नहीं करना चाहता था, क्योंकि वास्तव में सत्य को समर्थन की आवश्यकता ही नहीं होती। सत्य क्या था? बचपन से ही कौरव पांडव और मैं इनकी मनोरेखाएं भली प्रकार परखने में विफल रहने वाले गुरु द्रोण क्या इसके लिए कम उत्तरदायी थे? अपने ही संसार में रमने वाला अर्जुन क्या इसके लिए बिल्कुल दोषी नहीं था? अपनी जीभ पर जो कभी अंकुश नहीं रख सका उस भीम का क्या इसमें कुछ भी हाथ नहीं था? प्रभावशाली व्यक्तित्व होने पर भी उसका औरों के दोष कम करने के लिए दंड की तरह कभी उपयोग न कर सकने वाले भीष्म पितामह क्या कम उत्तरदायी नहीं थे? वेद विद्या का अध्ययन कर जीवन का तत्व ज्ञान सदैव दूर खड़े रहकर मधुर शब्दों में प्रस्तुत करने वाले आचार्य विदुर को ही कोई उससे कैसे अलग कर सकता था? कुशल राजनीति के आवरण में कौरवों की कपट क्रीड़ा खेलने वाले शकुनी मामा का इसमें कोई हाथ ही नहीं था क्या? और कृष्ण जैसे महान प्रज्ञावान के साचर में रहकर धर्म सत्य नीति संयम आदि सभी चुने हुए सद्गुणों को अपनी बपौती समझने वाला युधिष्ठिर, ऋषि मुनियों ने भी समय समय पर साधुवाद या महान कहकर उसकी कीर्ति का ढिंढोरा पीटा था, वह युधिष्ठिर जब दूत की बलि बन गया तब भी क्या वह निर्दोषी था? जिन सामाजिक रूढ़ियों से घिरी होने के कारण पांचाली ने मैं कभी सूत की पुत्रवधि नहीं बनूंगी, कर्ण स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते यह कहकर मेरे उत्साही तरुण मस्तक पर धधकता हुआ अंगार रख दिया था। वे लौह भित्ति जैसी सामाजिक रूढ़ियां क्या बिल्कुल कारणीभूत नहीं थी? अंधे महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी देवी, वे दोनों ही क्या इस घेरे से मुक्त किए जा सकते थे? पुत्रों का उचित मार्गदर्शन न कर सकने वाली राजमाता कुंती देवी को भी अलग रखने का साहस कौन बुद्धिमान कर सकता था? इनके अतिरिक्त और भी न जाने कितने कारण जिनको मैं नहीं जानता था इस महाभयानक सत्य के पीछे खड़े होंगे यह कोई भी नहीं बता सकता था। परंतु सबको दिखाई पड़ा था अकेला कर्ण दृश्य स्वरूप में बोलने वाला। मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं बिल्कुल निर्दोष नहीं हूं, परंतु मेरे सदोष होने का कोई न कोई कारण अवश्य था। प्रत्येक घटना में मेरा आचरण एकमात्र एक तीव्र प्रतिक्रिया थी। राजधानी के अन्य किसी भी व्यक्ति के पास क्या ऐसा कोई कारण था जिसे वह अपने आचरण के समर्थन में प्रस्तुत कर सके? बिल्कुल नहीं। कौरव पांडवों का वैर केवल कर्ण के कारण उत्पन्न हुआ, पनपा, पुष्ट हुआ और फैला। या बकवास करने वाले लोगों को मैं निर्दोष हूँ कहने की इच्छा भी मेरी नहीं होती थी। इस वैर के संबंध में कोई भी निर्दोष नहीं था यह मैं अच्छी तरह जानता था। अब कौरव और पांडव गुरुकुल के एक दूसरे के लिए आप्त नहीं रहे थे। मगधों के जरासंध में और मथुरा के श्रीकृष्ण में उतना वैमनस्य नहीं होगा जितना कि सभागृह की उस एक ही घटना ने कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न कर दिया था। मैं इसमें कौन हूँ? या जब मैं विचार करता हूँ तो राजा दुर्योधन द्वारा घोषित 101वां कौरव यही एक मार्ग अपने लिए निश्चित कर पाता हूँ। जीवन के किसी भी महाभयानक सत्य से घबराकर मुझे उस मार्ग से दूर नहीं भागना था, साक्षात मृत्यु से भी। द्रौपदी की लज्जा हरण की कटुकल्पना से उत्पन्न होने वाले सभी परिणाम मुझे भोगने थे अकेले ही। उसके लिए मैं अपने मन को तैयार कर रहा था और वह करते समय आदर्श के रूप में मुझको पितामह, आचार्य विदुर, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, विश्वकर्मा, यही नहीं बल्कि राजा दुर्योधन भी योग्य नहीं लग रहा था। इसके लिए मेरे मन का चुकाव अनजाने एक व्यक्ति की ओर हो रहा था, शकुनी मामा की ओर। राजनीति के घोर अरण्य में शकुनी मामा जैसे मार्गदर्शक की ही आवश्यकता होती है। पहले मुझे मामा के विचार कपटपूर्ण और क्रूर लगते थे। जीवन में कुछ आदर्श होते हैं, रक्त मांस के खाद से उनका पालन किया जाता है, यह सोचकर मैं उनकी प्रत्येक राजनीतिक चाल का विरोध किया करता था। परंतु दीर्घकाल के अनुभव से मुझको यह बात विश्वास हो गया था इस बात पर कि जो व्यक्ति बुद्धि का उपदेशात्मक आदेशात्मक उपयोग कर सकता है वही व्यक्ति संसार के सूत्र समझ सकता है। अब मैं मामा को यह दिखा देना चाहता था कि मैं भी उनसे भी अधिक महाभयानक कल्पनाएं कर सकता हूँ। आज तक दुर्योधन मामा जी के संकेतों पर नाचता आया था, अब मैं भी उसको नचाने वाला था। आदर्श आदर्श रटकर अनेक कल्पनाएं हृदय में संजो रखने वाले कर्ण को मारकर उसका शव नियति ने सभागृह के ढेरों वस्त्रों के ढेरों में पहले ही कसकर लपेट दिया था। अधःपतन वह एक बार हुआ था या 100 बार, बात एक ही है।